मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 12 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं मोनिका मिश्र का, जिनका गांव है शंकरगढ़, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने एकेडमी की बस कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे थोड़ा सा वाणिज्यिक बैंकों के बारे में बात करूंगा, जिसे आप इंग्लिश में कमर्शियल बैंक कहते हैं, राइट। लेकिन इससे पहले आइए जो दूसरी छोटी छोटी खबरें हैं थोड़ी सी उनकी चर्चा कर लेते हैं। ईरान में हमारा अभियान सफल रहा कि वहाँ हमारे कुछ लोग फंसे हुए थे और आप देख रहे हैं कि ईरान में कोरोना वायरस का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो हमारे लोग गए, हमारा जहाज गया, विमान गया और वहां से उन लोगों को निकाल करके ले आया। बस छोटी सी खबर है, दिमाग में आपके दर्ज हो जाए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनमें हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसलिए मैं केवल संकेत के तौर पर ये कह रहा हूं। न्यूज में आप देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। मित्रों, अब इसके बारे में बहुत विवादास्पद बयान भी आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जितना भय दिखाया जा रहा है उतना भय की बात नहीं है। मतलब अपने ढंग से वो कह रहे हैं कि 7 अरब की आबादी में अगर कुछ लोग, 1 लाख लोग भी अगर संक्रमित हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां तक हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी आबादी है, केवल 65 लोग संक्रमित हुए हैं। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर लोग हैं वे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, और वैसे भी हम भारतीयों का इम्यून पावर बहुत जबरदस्त है, आसानी से कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये तो जरूर है कि जो भी एहतियात सरकार कह रही है, जो मेडिकल साइंस कह रहा है, वो हम लोग अपने अपने ढंग से डेफिनेटली हम सबको बरतना चाहिए। अभी जो कोरोना वायरस को लेकर के एक जो प्रश्न बन रहा है और जिस पर हम लोग पहले बात भी कर चुके हैं कि इसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए शेयर मार्केट लगातार बहुत बुरी तरह से गिरता चला जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले डेली ऑडियो लेक्चर में कुछ बातें भी की थी। हालांकि कारण सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, यह भी एक कारण है, दूसरे भी बहुत से कारण हैं, लेकिन देखते हैं कि स्थिति क्या कहां जाकर रुकती है और क्या रूप लेती है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो अभी राजनीतिक संकट आया हुआ है, फ्रेंड्स आप इस सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख ही रहे होंगे। देखिए संकट क्या है, कैसे है, उसके कितने किसके पास सीट्स हैं, क्या हो रहा है, वो यहां इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आपको थोड़ा सा पॉलिटी के निगाह से इसे देखना होगा। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं, या कह लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। दूसरा है पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को व्यवहार में लाया कैसे जा रहा है, है ना। तो लोकतंत्र है, कहीं भी सरकार कैसे बनती है, पूरे उसके विधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ठीक है, वो एक पक्ष है। लेकिन फिर आगे पीछे क्या होता है, कैसे होता है, आप इसको समझने की यहां कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर है मेंस का, उसमें पॉलिटी के नॉलेज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के का नॉलेज एक पक्ष है, आप सच पूछे तो जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो ज्ञान है वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। लेकिन सेकेंड पेपर में, यानी कि मेंस के सेकेंड पेपर में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पॉलिटी की समझ आप में होनी चाहिए। तो एक अवसर है जब आप पॉलिटी की समझ को थोड़ा सा अपना विकसित कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपके पास समझ है तो उसे मान सकते हैं। दोस्तों, बैंक को लेकर के एक प्रश्न थोड़ा सा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और वह है आर्थिक नैतिकता। ये मैं खासकर आपके फोर्थ पेपर को लेकर बात कर रहा हूं, मेंस की फोर्थ पेपर को लेकर के, जिसमें इंटीग्रिटी मॉरलिटी वगैरह के बारे में पूछा जाता है कि क्या आर्थिक नैतिकता कोई चीज होती है, और उस आर्थिक नैतिकता से बाहर हटकर जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका कितना बड़ा खामियाजा होता है, कितना बड़ा डैमेजेस होता है। देखिए जब हम करप्शन की बात करते हैं तो वो एक प्रशासनिक नैतिकता के तहत आ जाता है, राजनीतिक नैतिकता के तहत आ जाता है, लेकिन जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक ही है, वो जब इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं, जिस तरह की गड़बड़ियां यस बैंक के बारे में सुनने में आ रही हैं, पढ़ने में आ रही हैं, तो वहां फिर ये लगता है कि आर्थिक नैतिकता कहां जा रही है, और फिर इस पर बकायदे नियंत्रण रखने के लिए कुछ रेगुलेटरीज अथॉरिटी हैं, और साथ ही साथ आप देखिए कि बकायदे बैंकों के ऑडिट होते हैं, है ना, लेखा जोखा होता है उनका। जो जब लेखा परीक्षण होता है तो जो लेखा करने वाले लोग हैं यहां, उनकी भी आर्थिक नैतिकता का सवाल उठता है कि वो इन बातों को क्यों नहीं सामने लाते कि अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है। एक साथ जब कभी विस्फोट हो जाता है तब चीजें हमारे सामने आती हैं। तो आर्थिक नैतिकता वाला जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसे भी आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। और डेफिनेटली मैं ये जो बात कह रहा हूं ये मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से कह रहा हूं। तो दोस्तों आइए अब मैं आज के मुख्य विषय पर थोड़ी सी बातें करूं, और वह है वाणिज्यिक बैंक को लेकर। मैंने वाणिज्यिक बैंक टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि अभी जो बैंकों की बातें हो रही हैं उसमें देखिए कि बार बार वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक कहा जा रहा है। तो इनफैक्ट आपको मुझे लगता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि इनफैक्ट ये वाणिज्यिक बैंक क्या है। वैसे तो आप जानते होंगे डेफिनेटली, जैसे एस बैंक है तो एस बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके की जानकारी मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है। देखिए जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, डेफिनेट वाणिज्यिक बैंक का मतलब ही है लेन देन करने वाले, जो है ना, जो बहुत ही व्यावसायिक स्तर पर धन का लेन देन कर रहे हैं। जो बैंक है, बैंक किस वस्तु का लेन देन करता है, कौन सी चीज खरीदता और बेचता है, यूं कह लीजिए कि धन, पैसा, मनी, करेंसी, राइट। तो ये वाणिज्यिक बैंक हो गए, बहुत ही सिंपल सा है। अब आप देखिए कि ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य तौर पर मैं बता रहा हूं, फिर आपको आगे चल करके बताऊंगा। उस रूप में दो प्रकार के नहीं, वैसे तो पांच प्रकार के होते हैं। मूल रूप से दो प्रकार इस मायने में कि इसमें कुछ अनुसूचित बैंक होते हैं और कुछ नॉन अनुसूचित बैंक, कह लीजिए शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ये शब्द आपको कभी कभी पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो शेड्यूल्ड बैंक है ये बेसिकली जो आरबीआई का एक्ट है 1934 का, उसका जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें सूचीबद्ध होते हैं। ये बल्कि ये एक्ट आपको रट भी जाना चाहिए, आरबीआई एक्ट 1934, इसी के तहत ही आरबीआई की भी स्थापना की गई थी आजादी से पहले। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो इसमें सूचीबद्ध नहीं होते, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो देखिए जो वाणिज्यिक बैंक है, बेसिकली ये जो अनुसूचित बैंकों को अगर हम ले लें, मैंने शेड्यूल्ड बैंक बताया, तो शेड्यूल्ड बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं और दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो यही है कि जो आपका पैसा लेते हैं, जरूरत पड़ने पर आपका पैसा देते हैं और उद्योगों को ऋण भी देते हैं, यानी कि पैसे का लेन देन करते हैं, वो कमर्शियल बैंक हो गए। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और ये कोऑपरेटिव की थ्योरी पर बने हुए होते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि जब संकट आया था महाराष्ट्र के एक बैंक पर, वो सहकारी बैंक था पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वहां भी जबरदस्त किस्म से संकट आया था जिसके बारे में बहुत लंबे समय तक अखबारों में आता रहा। अब दोस्तों ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पांच प्रकार के होते हैं। अब मैं मेन इशू पर आ रहा हूं, पांच प्रकार के होते हैं और इनके प्रकार का जो निर्धारण होता है वह इनकी प्रोप्राइटरीशिप पर होता है, यानी कि इस पर किसका स्वामित्व है, मतलब जो मेन है उसके आधार पर कमर्शियल बैंक को पांच प्रकार का बनाया गया है। अब आप देखिए कि उसमें कौन कौन से बैंक हैं। याद रखिए कि इसमें आरबीआई नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामान्य बैंक नहीं है, वो उस तरह का बैंक नहीं है जिसे हम बैंक कहते हैं, जो बोलचाल की भाषा में है ना, वो अलग है। तो जो पांच कमर्शियल बैंक हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इनके अंतर को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि बैंकों के बारे में फिर जो आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उन्हें समझने में आपको काफी आसानी हो जाएगी या स्पष्टता आ जाएगी। पहला है भारतीय स्टेट बैंक और उनसे संबद्ध बैंक। देखिए जब हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ये एक बैंक है अपने आप में, लेकिन दूसरे भी बहुत से ऐसे बैंक हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। और ये जो दूसरे जुड़े हुए जो बैंक हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 बना था उसके तहत ये बकायदे रजिस्टर्ड होते हैं, इसकी स्थापना होती है। अब ये जो दूसरे बैंक जो स्टेट बैंक से जुड़े हुए हैं, ये कौन से बैंक हैं, क्या इनका कोई नाम है? जैसे जगह कभी कभी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे नाम सुने हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, सबके पहले स्टेट बैंक लगा रहता है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। तो ये जितने भी शुरू में लगा हुआ एसबी स्टेट बैंक ऑफ, तो ये सब स्टेट बैंक से संबद्ध बैंक होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सब उसी ग्रुप में, ये पहला ग्रुप है। जो इसका सेकेंड बैंक है वो है नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। अब देखिए कि आपको थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक में क्या फर्क है। वो फर्क ये है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, स्थापना जो हुई है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959 और ब्रैकेट में सब्सिडरी बैंक्स, एक्ट दूसरा हो गया और ये सब्सिडरी बैंक है। नेशनलाइज्ड बैंक, अभी भारत सरकार ने कुछ बैंकों के जो विलय की बात की है, ये नेशनलाइज्ड बैंक है, राइट। इसके बाद जो तीसरा ग्रुप है इसका, वो है निजी बैंक, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स कहते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को भी अलाउ किया है भारत ने। एस बैंक इसी के अंतर्गत आता है। एस बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI है, HDFC बैंक है, जगह जगह आपको इनके बैनर्स पढ़ने को मिलेंगे। ये सब निजी बैंक हैं। चौथा है फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंक जो विदेश से आकर के भारत में कारोबार कर रहे हैं, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब विदेश के बैंक हैं जो भारत में आकर काम कर रहे हैं। और पांचवा है फ्रेंड्स क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। ये हर स्टेट के अपने हैं, इनका काम वही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो ज़रूरतें हैं उनको ये पूरा करते हैं। समय समय पर आपको इनके बारे में कुछ पढ़ने को मिल जाता होगा, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनका परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सरकार का उद्देश्य चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध करानी थी, उनको जमा की सुविधाएं देनी थी। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें बड़े बैंक ऋण नहीं दे पा रहे थे, बड़े बैंक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे उनकी ब्रांचेज, तो सरकार ने फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की है। तो दोस्तों ये पांच प्रकार के बैंक हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तैयारी आपको अलग से करनी भी चाहिए, क्योंकि भारत ग्रामीण प्रधान देश है, कृषि को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो उस लिहाज से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं। अखिल जो उत्तराखंड से हैं, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से, अलका चंद्र पंजाब से, अंकित पांडे और जहीर हाशमी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।